आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।
गुड इवनिंग, नमस्कार। 4 मई है आज, दिन है मंगलवार और मैं अमन गुप्ता लेकर आ गया हूं शाम का खबरनामा दिन भर। हर शाम हम यहां आपको देश दुनिया की खबरें बताते हैं, उन खबरों पर एनालिसिस करते हैं जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। तो आज कौन सी खबरें हैं वो बताता हूं। कोरोना के इस मुश्किल वक्त में दुनिया भारत के साथ आई है। भारत को अलग अलग देशों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं। चूंकि मदद कितनी आई है इसे लेकर सरकार कोई आंकड़ा नहीं दे रही है, लेकिन हम ये जानेंगे कि इस मदद को बांटा कैसे जाएगा और इस पूरी प्रक्रिया में शामिल मंत्रालयों के बीच तालमेल कैसे बनेगा। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के नाम पर इन दिनों ठगाई का काम चल रहा है। परेशान आदमी की मजबूरी का फायदा उठाने वाले कई गैंग्स ऑनलाइन सक्रिय हैं। तमाम शिकायतें प्रशासन के पास पहुंच रही हैं। तो इस तरह की ठगी पर लगाम लगाना प्रशासन के लिए मुश्किल क्यों हो रहा है और इन गैंग्स के ऑपरेट करने का तरीका क्या है, और कोरोना के मामलों में पश्चिमी राज्यों से उत्तरी राज्यों की ओर एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है, ऐसे में क्या मुश्किल खड़ी होने वाली है भारत के सामने, कौन कौन से राज्यों में इस समय दूसरी लहर की पीक है, ये कब खत्म होगी और तीसरी लहर जिसका अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जल्द ही आएगी कितनी खतरनाक होगी, उत्तर प्रदेश में हुए पंचायत चुनावों में किस पार्टी का बोलबाला रहा, इन परिणामों के आधार पर 2022 के विधानसभा चुनावों की क्या तस्वीर होगी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हेडलाइंस का वक्त है, सुनिए जमशेद से।
भारत में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है जिसका नाम AP स्ट्रेन रखा गया है। खबर है कि ये वेरिएंट पुराने वेरिएंट्स के मुकाबले 15 गुना ज्यादा ताकतवर है। IPL टीमों में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बाद BCCI ने अनिश्चित काल के लिए IPL को सस्पेंड कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से IPL की कई टीमों में कोरोना के केस सामने आए थे। पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर राज्य का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाए जाने की मांग की है। उन्होंने अपील की है कि 50 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कोटा बढ़ाया जाए। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। नीतीश सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को लॉकडाउन की डिटेल गाइडलाइन जारी करने का आदेश दिया है। इस दौरान सरकारी प्राइवेट कार्यालय सब बंद रहेंगे, सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठान या संस्थान ही खुले रहेंगे। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली में 72 लाख राशन कार्ड धारकों को 2 महीने तक मुफ्त में राशन मिलेगा, साथ ही ऑटो और टैक्सी चालकों को 5,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। अविभाजित जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे जगमोहन मल्होत्रा का सोमवार रात निधन हो गया। उनके देहांत की सूचना उनके परिवार ने उनके ही ट्विटर हैंडल पर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन को देश के लिए एक बड़ी क्षति बताते हुए लिखा है कि वो एक बेहतरीन प्रशासक और प्रख्यात विद्वान थे। बंगाल में चुनावी नतीजे आने के बाद हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। BJP ने CBI जांच की मांग की है। इधर PM मोदी ने इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से फोन पर बातचीत की।
भारत में कोरोना की बढ़ती लहर ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरह प्रभावित किया है। ऑक्सीजन बेड और दवाइयों की कमी से आने वाली मौत की खबरें आम हो गई हैं, और इसी को देखते हुए भारत के लिए कई देशों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। हांगकांग, रोमानिया, अमेरिका, दुबई, बैंकॉक, सिंगापुर जैसे 40 देशों और तमाम संस्थाओं ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, दवाई, वैक्सीन और बहुत से मेडिकल इक्विपमेंट्स की खेप भारत को भेजी है। लेकिन अभी तक कितनी मदद आई है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। सरकार कोई आंकड़ा दे नहीं रही है। विपक्ष की ओर से इस पर लगातार सवाल किए जा रहे हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि भारत को कम से कम 300 टन अंतर्राष्ट्रीय सहायता मिली है, बावजूद इसके प्रधानमंत्री कार्यालय ये नहीं बता रहा कि उसके साथ हुआ क्या। उन्होंने ट्वीट करके पूछा है कि ब्यूरोक्रेटिक ड्रामे के कारण कितना लाइफ सेविंग मटेरियल स्टोरेज में अटक गया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बाहरी देशों से जो मदद मिल रही है उसका ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की है। उधर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने प्रेस ब्रीफिंग में बस इतना कहा है कि ये सब इन प्रोसेस है, मतलब काम जारी है।
विदेश से जितने भी हमारा जो सामान आ रहा है वह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ उसको समझ रही है, समझने के बाद एक प्रोसेस है बेस्ड ऑन नीड उसको एलोकेट किया जाएगा। कुछ ही देशों से जो हमारे मित्र देश हैं जिससे कुछ सामान है उनको कोऑर्डिनेट करके उनकी सप्लाई लानी शुरू हुई है, वह प्रोसेस अभी इन प्रोसेस है, उनका लॉजिस्टिक्स और मूवमेंट टाइप किया जा रहा है।
खैर काम कितना ढुलमुल है आप इससे समझिए कि 24 अप्रैल को विदेश से इक्विपमेंट की पहली खेप भारत आ गई थी, लेकिन इसके बाद केंद्र ने लाइफ सेविंग मेडिकल सप्लाईज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए SOP तैयार करने में ही 7 दिन लगा दिए। और इस दौरान अस्पतालों में न जाने कितने लोग ऑक्सीजन की राह देखते देखते और दवाई की भीख मांगते मांगते मरते रहे। अब चूंकि सरकार से डेटा मिला नहीं है, लेकिन विदेशों से मदद आना जारी है, सवाल ये है कि इसका बंटवारा कैसे होगा, और यही पूछा हमने आज तक रेडियो के रिपोर्टर मुनीष पांडे से।
इसमें कुल मिलाकर अगर अभी बता दें तो ये राहत सामग्री आई तो जरूर है, लेकिन उसका जो बंटवारा है उसको लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है, जिसमें कि NEA के अधिकारी हैं, उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, जो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट है उसके अधिकारी हैं। तो ये सभी अधिकारी मिलकर एक टीम बनाए हुए हैं, और जैसे ही राहत सामग्री आती है उसके बाद में ये जो जानकारी है कि क्या राहत सामग्री किस देश से आई है उससे फिर इस टीम को बताया जाता है, और ये टीम आगे तय करती है कि किस राज्य को या किस अस्पताल को कितनी राहत सामग्री देनी है, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार ये शिकायतें आ रही हैं कि ऑक्सीजन या दवा की कमी के चलते वहां पर जो मरीज हैं, कोरोना ग्रस्त मरीज हैं, उनकी लगातार मृत्यु हो रही है। तो उस पर रोक लगाने के लिए कमेटी का ये दावा है और सरकार का ये दावा है कि राहत सामग्री आने के बाद में ये कमेटी फैसला लेती है कि किसको क्या राहत सामग्री मिलनी चाहिए, और उसके बाद में इसका बंटवारा कर दिया जाता है।
अच्छा मुनीश, चूंकि मदद विदेश से आ रही है तो इसमें विदेश मंत्रालय भी इन्वॉल्व हो जाता है, दवाइयां हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं तो स्वास्थ्य मंत्रालय भी इन्वॉल्व हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व हो जाता है, गृह मंत्रालय भी इन्वॉल्व हो जाता है। अब ये मामला इन मंत्रालयों के बीच उलझा दिखाई देता है, तो इन मंत्रालयों में कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा?
जी देखिए, कोऑर्डिनेशन के लिए मंत्रालय जितने भी हैं वहां से एक या दो अधिकारी, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप जो दूसरे मंत्रालय के अधिकारी हैं उनके साथ में आप कोऑर्डिनेट करिए। इसके लिए एक वर्चुअल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है और वहां पर सारी बातचीत 9:30 से शुरू होती है जो देर शाम तक चलती है, और उसके बीच में जो कोई भी रिलीफ मटेरियल किसी भी देश से आया हुआ है, फॉरेन कंट्री से आया हुआ है, उसकी जानकारी इनको पहुंचाई जाती है, और उसके बाद में वो कहीं ना कहीं इसे एलोकेट करने का, यानी कि दूसरे जो राज्य हैं या अस्पताल हैं उनको देने का काम करते हैं। लेकिन जो आपने सवाल पूछा है काफी अहम सवाल है, क्योंकि देखिए 24 अप्रैल से जितने भी सामान थे, चाहे वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर हो जाए, और खास करके ऑक्सीजन से संबंधित जो सामान थे वो लगातार देश में आना शुरू हो गए थे। लेकिन 2 मई को सरकार की यह जो कमेटी है उसने, यानी कि एक हफ्ते बाद जब से सामान आना शुरू हुआ, राहत सामग्री आना शुरू हुआ, लगभग एक हफ्ते बाद 2 तारीख को यह तय किया गया कि किस राज्य को और किस इंस्टीट्यूशन को, यानी कि चाहे वो आर्मी के अस्पताल हो या फिर एम्स जैसे बड़े सरकारी अस्पताल हो, इन अस्पतालों को दिया जाना है, ये 2 तारीख को तय हुआ। तो कहीं ना कहीं सवाल ये जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार एक हफ्ते का वक्त क्यों लगा, जबकि हम देख रहे थे कि राजधानी दिल्ली में कई दर्जन मरीजों ने अपनी जान गंवा दी ऑक्सीजन के चलते, कई लोग यूपी में, उत्तर प्रदेश में अपनी जान गंवा दी है दवाओं की कमी की वजह से। उसके अलावा अगर राजस्थान की बात कर लें या कर्नाटक की बात कर लें, वहां पर भी कई बार ऐसी शिकायतें आई कि लगातार अस्पताल कहता रहा कि उनके पास में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लेकिन फिर भी राहत सामग्री उन तक नहीं पहुंच पाई, ऑक्सीजन उन तक नहीं पहुंच पाई।
अच्छा मुनीश, विदेशों से आ रही ये मदद आने का और इसे बांटे जाने का सिलसिला कब तक चलने वाला है?
देखिए अभी हालात जो हैं वो किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते कि बेहतर हो रहे हैं। लगातार जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, चाहे वो प्लांट्स हो जाए या फिर ऑक्सीजन कंटेनर्स जो होते हैं उन्हें विदेशों से लाने का जो सिलसिला है वो चलता ही रहेगा, क्योंकि अभी भी कंटेनर्स की बहुत ज्यादा दिक्कत है देश में, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती। आप राजधानी दिल्ली की बात कर लें तो यहाँ पर जो सरकार है, राज्य सरकार, अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि लगभग 800 मेट्रिक टन से 900 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, जबकि सप्लाई लगभग 400 ही हो पा रही है, जिसकी वजह से कई मरीज अपना दम तोड़ रहे हैं। वहीं अगर बात करें पंजाब की तो उनका भी कहना है कि जो उनके कोटे का ऑक्सीजन मिलता है उसे भी 50 मेट्रिक टन ज्यादा कर देना चाहिए। राजस्थान भी वही शिकायत कर रहा है। तो लगातार ये जो ऑक्सीजन को लेकर दिक्कतें हो रही है, इसको लेकर लगातार सप्लाई का जो काम है वो चल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से आ रहा है सामान और राहत सामग्री खास करके जो दूसरे देशों से आ रही है, उसके आने का सिलसिला अगले 1-2 हफ्ते तक तो कम से कम चलता रहेगा, क्योंकि जब तक ये हालात बेहतर नहीं हो जाते, मरीजों के मरने का सिलसिला कम नहीं हो जाता, कोरोना वायरस से ग्रसित होने वाले लोगों की जो संख्या है वो नए संख्या में अगर कोई कमी नहीं आती है, तब तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और कहीं ना कहीं सरकार, राज्य सरकार के ऊपर जिम्मेदारी सौंपना चाहती है, लेकिन राज्य सरकार जो है वो अभी भी केंद्र से ही लगातार मदद मांग रहे हैं, और केंद्र सरकार का कहना है कि वो अपनी पूरी कोशिश से मदद तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये मदद जो ग्राउंड है उस पर तो अभी भी कमी नजर आ रही है।
ये थे आज तक रेडियो के रिपोर्टर मुनीश पांडे। कोरोना की दूसरी लहर में एक तरफ वो लोग हैं जो इस मुश्किल वक्त में अजनबी लोगों की मदद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन लोगों की भी कमी नहीं है जो जमकर नकली दवाओं और ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे हैं। नोएडा में रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर ठगी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ में भी पुलिस ने दो ऐसे छात्रों को गिरफ्तार किया है जो ऑक्सीजन सिलेंडर देने के नाम पर एडवांस पैसे लेकर ठगी कर रहे थे, और इनकी ठगी का शिकार हुए परिवार के सदस्य की बिना ऑक्सीजन के जान चली गई। इसके बाद हजरतगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने अब तक 10 लोगों को ठगी का शिकार बनाया था। खैर, ये घटनाएं सिर्फ लखनऊ, दिल्ली या नोएडा तक सीमित नहीं हैं। पूरे देश में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के नाम पर इस तरह की ठगी करने वाले बहुत से गैंग सक्रिय हैं। इस तरह की ठगी और कालाबाजारी करने वाले गैंग से बचने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक अलर्ट जारी किया है और एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 011-2346-9900। लेकिन इन गैंग्स की बढ़ती तादाद पर नकेल कसना पुलिस के लिए मुश्किल क्यों हो रहा है और इनके काम करने का तरीका क्या होता है, यही जाना हमने आज तक रेडियो रिपोर्टर संतोष शर्मा से।
देखिए, अगर दोनों इस तरीके के जो गैंग्स हैं जो सोशल मीडिया के जरिए इस आपदा काल में लोगों को शिकार बना रहे हैं, उनके जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी है बहुत साधारण है। ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। इन लखनऊ में अगर बात करें तो 9वीं और 10वीं के स्टूडेंट्स हैं, दोनों ही बहुत अच्छे घरों के हैं, और इन लोगों ने क्या किया कि ट्विटर और अपने जो दूसरी सोशल मीडिया की साइट्स हैं वहां पर दो नंबर इन्होंने डाले और वायरल किया, और ये कहते हुए कि अगर किसी को रेमडेसिविर और ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है तो हम उसको पहुंचाएंगे, हम उसको देंगे और इसके एवज में पैसा लेंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए इन लोगों ने 8500 का कॉस्ट कोट किया कि 8500 रुपये लिया जाएगा, और रेमडेसिविर का 3500 रुपये। दूसरा अगर बात की जाए इनके भरोसे की, तो इन लोगों ने ट्रू कॉलर पर, जो लखनऊ में गैंग पकड़ा गया, इन लोगों ने ट्रू कॉलर पर ऐसा नाम रखा था जिसे बीजेपी विधायक के नाम से इन लोगों ने ट्रू कॉलर से अपने नंबर को सेव कर लिया था, जिससे अगर कोई व्यक्ति चेक भी करे तो ट्रू कॉलर से जो नाम आए वो इस तरीके से दिमाग में आ जाए कि हाँ, कोई व्यक्ति सत्तारूढ़ दल का होगा, लिहाजा वो मदद कर रहा होगा, वो हमारी मदद के लिए होगा, जेन्यून पर्सन होगा। ये इस तरीके से काम करते हैं, और जब आप उनसे बात कर लेंगे किसी को रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए तो ये उसका 40% जमा करा लेते थे गूगल पे के जरिए, फोन पे के जरिए, और जैसे ही वो फोन पे से पैसा उनके अकाउंट में पहुंचता था उस नंबर को ब्लॉक कर दिया जाता था, यानी कि फिर इन फ्यूचर आप उस नंबर पे कांटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनका जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी बहुत साधारण है, लेकिन जिस समय पर व्यक्ति परेशान होता उस समय पर वो इस बात को नहीं ध्यान दे पाता है। ऐसे में उस व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है कि अगर कोई आपको रेमडेसिविर या ऑक्सीजन सिलेंडर या कुछ भी देने की बात कर रहा है तो एक बार उसको वेरीफाई कर लें, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपके साइकोलॉजिकल जो ट्रॉमा है उसका वो सदुपयोग कर रहा है, जो आपको ठगी का अपना शिकार बना रहा है।
संतोष, भावनात्मक तौर पर भी ये बात बहुत उदास करती है कि ऐसे दौर में भी कुछ लोग बेईमानी करने से चूक नहीं रहे। एक सवाल इसलिए ये भी है कि ऑनलाइन ठगी करने वालों से बचने के लिए क्या एहतियात किए जाएं, कैसे बचा जाए?
देखिए, इस सोशल मीडिया के दौर में जहां पर ये दुधारी तलवार है, आपको वेरीफाई जरूर कर लेना चाहिए कि आपदा काल में रेमडेसिविर जैसा इंजेक्शन, जिसको कि कंट्रोलिंग राशनिंग पूरा स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, तो वहां पर अगर कोई प्राइवेट आदमी दे रहा है तो जाहिर है कि वो आपसे पैसे लेने की लालच में दे रहा है, और वो पैसे देगा तो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा होगा, कोई गैरकानूनी है। आप कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि आप ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरा, इनसे बचने की अगर बात करें तो इनसे बचने का सिर्फ एक तरीका है कि आप ऐसे किसी भी नंबर को, अगर वो गूगल पे या फोन पे करवा रहे हैं तो उस नंबर को जरूर वेरीफाई करा ले कि ये नंबर किस अकाउंट में जा रहा है, उसके बाद वो नंबर काम करेगा या नहीं करेगा। जब तक कि किसी व्यक्ति से वेरीफाई ना हो जाए कि हाँ, मुझे इन लोगों से मदद मिली, तब तक आप बिल्कुल किसी को पेमेंट ना करें, क्योंकि इस आपदा काल में लोग जो परेशान हैं उनसे ये लोग फायदा उठा रहे हैं, उनके जो मेंटल ट्रॉमा है उसका ये लोग फायदा उठा रहे हैं। लिहाजा सिर्फ सतर्कता से ही उसे बचा जा सकता है, क्योंकि इन लोगों ने सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल हो रहा था, लोग सोशल मीडिया के जरिए लोगों की मदद कर रहे हैं, वो वॉलेंट्रीली कर रहे हैं, बट ये लोग उस इसी का फायदा उठाते हुए सोशल मीडिया को ही अपना सबसे बड़ा टूल बना रहे हैं, लिहाजा सतर्कता से ही पता जा सकता है।
ये थे आज तक रेडियो रिपोर्टर संतोष शर्मा। और राज्यों ने धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन की घोषणा शुरू कर दी है। कई राज्यों में आंशिक, वीकेंड, नाइट या फुल लॉकडाउन लगाया जा चुका है। इस बीच देश भर में कोरोना के केस कभी घटते तो कभी बढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि घटने बढ़ने का ये अंतर बहुत कम है। एक और खास चीज़ इस ट्रेंड में देखने को मिल रही है, वो ये कि अभी पश्चिमी भारत, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्य आते हैं, वहाँ कोरोना के केसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं। लेकिन जब हमारी नज़र यूपी, एमपी, बंगाल, असम जैसे राज्यों पर जाती है तो यहाँ केस बढ़ने के आसार नज़र आते हैं। तो पश्चिम से ये शिफ्ट उत्तर की तरफ और तमाम राज्यों की तरफ क्यों दिख रहा है, इससे क्या मुश्किलें कोविड को लेकर यहाँ के राज्यों के सामने बढ़ने वाली हैं, इस पर आज तक से एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने बात की। क्या कहा उन्होंने, सुनिए।
वेस्ट इंडिया की बात करें तो वहाँ पे केसेस स्टेबलाइज होके कुछ हद तक कम होने शुरू हुए हैं। तो महाराष्ट्र में तो अब ऐसा लगता है जैसे पीक आ गया है। अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें, दिल्ली और आसपास के क्षेत्र की, तो उसमें मुझे लगता है अभी कुछ दिन और लगेंगे। हो सकता है कि मिडिल ऑफ दिस मंथ तक शायद पीक आ जाए, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम लोग कितना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन करते हैं जिससे वायरस को आगे फैलने ना दें। लेकिन डर यही है कि फिर जो पैंडेमिक है थोड़ा ईस्ट इंडिया की तरफ ना फैले, कि वहाँ पे केसेस बढ़ना शुरू हो। असम और बंगाल में देखें तो वहाँ पे अभी केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं, तो ये भी एक चिंता का विषय है।
ये थे एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया। तो सवाल ये भी पैदा होता है कि कौन कौन से राज्यों में अभी कोरोना पीक पर है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश, असम, बंगाल के अलावा कौन कौन से राज्य होंगे जिन पर कोरोना का खतरा मंडराने वाला है, ये पूछा मैंने पब्लिक हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया से।
मेरी राय में अभी यह कहना कि कौन सा राज्य कोरोना के पीक पर पहुंच गया है थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। हम यह सच है कि पिछले कुछ दिनों में हमने कुछ राज्यों में कोरोना का जो नए केसेज आ रहे थे उनमें कमी देखी है। दिल्ली, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कुछ राज्यों में यह कमी आई है। लेकिन साथ में हमें यह भी याद रखना होगा कि इन राज्यों में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट काफी हाई चल रही है, और जब अगर हम टेस्ट का थोड़ा बदलाव लाएंगे, टेस्ट की संख्या बढ़ेगी, तो हो सकता है एब्सोल्यूट नंबर ऑफ केसेज जो है वो अभी उसी स्तर पर आ जाए। तो फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन कुछ अच्छे संकेत हैं उनको हमें याद भी रखना होगा। साथ में यह भी देखने को मिल रहा है कि बिहार, उत्तर प्रदेश में कुछ जगह, असम, वेस्ट बंगाल, इन सब राज्यों में पहले से अधिक केसेज आ रहे हैं। फिलहाल दक्षिण भारत में देखा जाए तो केस तुलनात्मक रूप से कम है, लेकिन वहां पर भी यह कहना जल्दबाजी होगा कि अब केस नहीं आएंगे। तो कुल मिला के कहें तो चूंकि हम सेकेंड वेव के मध्य में है, लगभग वेव अभी भी चल रही है, मेरा मानना है कि जब तक टेस्ट पॉजिटिविटी रेट एक राष्ट्रीय स्तर पर 10% से या उससे भी कम नहीं आ जाती, और दरअसल या 5% से कम होनी चाहिए, तब तक इसका आकलन करना मुश्किल होगा। साथ में मैं यह भी कहूंगा कि हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी होगी। केसेज के पीक कम हो गए हैं, नहीं हो गए हैं, जब तक एब्सोल्यूट नंबर ऑफ केसेज बहुत हाई आ रहे हैं उनको स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करनी है। मेरी राय में एज एपिडेमियोलॉजिस्ट मैं कहूंगा कि इस बात का आकलन कि पीक कब आया था और कब खत्म हो गया, वो जब यह लहर खत्म होगी उसके अंत में ही करना चाहिए, उससे पहले करना जल्दबाजी है।
अच्छा डॉक्टर चंद्रकांत, अगर हम कोरोना के इस दूसरी पीक की बात करें तो ये पूरी तरह खत्म होता कब दिखाई देता है, और जो तीसरी पीक की बात की जा रही है वो कितना खतरनाक दिख रहा है?
सबसे पहली बात है कि अभी जो सेकेंड वेव चल रही है उसका पीक कब आएगा, इस पर कुछ मॉडलिंग की गई है। लेकिन साथ में हम यह भी जानते हैं कि एक पूरे देश का एक डिफरेंट पीक होगा, और राज्यों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग पीक होंगे। तो पूरा देश का पीक राज्यों में क्या हो रहा है इस बात को दर्शाता है। तो हो सकता है कि देश का पीक निकल जाए जो हम नेशनल स्तर पर देखें तो, लेकिन कुछ राज्य उसके बावजूद केसेज बढ़ते हुए नजर आए। तो फिलहाल यह कह सकते हैं कि कम से कम 4 से 6 सप्ताह तक इंतजार करना होगा, और उसके बाद अगर केसेज एक सस्टेनेबल वे में डाउनवर्ड ट्रेंड दिखता है, एपिडेमियोलॉजी की भाषा में इसको कहते हैं बेल शेप्ड कर्व, जिसमें ऊपर ऊपर जाता है और नीचे गिर के आता, जब तक नीचे वापस लौट के नहीं आ जाता और उसके बाद फ्लैटन नहीं हो जाता, तब तक हम इस लहर को खत्म नहीं मानेंगे, और ऐसा होने में कम से कम 4 से 6 सप्ताह लगेंगे ही। जहां तक तीसरी वेव की बात करें तो इस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि इस वेव में कितने लोग संक्रमित हुए हैं, साथ में इसके बाद लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का किस हद तक पालन करते हैं, और तीसरी बात कि वैक्सीन का कवरेज कहाँ तक पहुंच गया है। तो प्री एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी जो नेचुरल इन्फेक्शन के बाद आएगी, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीन, इन तीनों को मिलाकर जो परिणाम निकलेगा वो निर्धारित करेगा कि तीसरी वेव कितनी कैसी होगी। मुझे लगता है कि जिस तरह की गंभीर सेकेंड वेव से हम गुजर रहे हैं, आने वाली कोई भी वेव इससे कम होगी, और 1918 से 1920 की जो पेंडेमिक का अगर हम अनुभव के आधार पर देखें तो तीसरी और चौथी लहरें काफ़ी छोटी थी, हमेशा ही दूसरी लहर सबसे ज़्यादा तेज होती है, तो हम आशा रख सकते हैं, लेकिन आशा बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, हम वैक्सीन लगवाते रहें और सारी सावधानियां बरतें।
ये थे पब्लिक हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। इन चुनावों में भाजपा और कांग्रेस दोनों नेशनल पार्टीज के लिए बड़ी सीख रही। कांग्रेस को तो चौतरफा शिकस्त मिली, लेकिन भाजपा को खासकर पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन प्रदर्शन मनमाफिक नहीं रहा। इन्हीं चुनावों के साथ साथ 4 चरणों में पंचायत चुनाव भी हुए उत्तर प्रदेश में। वैसे तो पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में पार्टी सिंबल्स पर नहीं होता, लेकिन बात यह है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने स्तर पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया, उनके लिए प्रचार भी किया। पंचायत चुनाव की गिनती मोटा मोटी अब पूरी हो चुकी है। एक तरफ बीजेपी का दावा यह है कि उसने अधिकतर सीटें जीती हैं। चुनाव आयोग ने अभी अंतिम परिणामों की घोषणा नहीं की है, लेकिन ग्राउंड से आ रहे रिपोर्ट अलग ही सूरत बयां कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी को अपने स्ट्रांग होल्ड्स मथुरा, अयोध्या, वाराणसी और पश्चिमी यूपी की अधिकांश जगहों पर हार का स्वाद चखना पड़ा है। वहीं सपा भाजपा के सामने मजबूती के साथ खड़ी नजर आई। भाजपा के इस बुरे प्रदर्शन की वजह क्या है? क्या इन चुनाव परिणामों को 2022 के पहले योगी सरकार का लिटमस टेस्ट माना जाए? और अगर मानते हैं तो वे इसमें कितना पास हुए, कितना फेल हुए और इसकी वजह क्या है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए मैंने बात की लखनऊ में आज तक रेडियो रिपोर्टर कुमार अभिषेक से, और उनसे पूछा कि पंचायत चुनाव के परिणामों के नतीजों का मोटा मोटी जिस्ट क्या है, खासकर बीजेपी के लिहाज से क्या टेक अवे हैं।
उत्तर प्रदेश में जो ये पंचायत चुनाव के नतीजे आए हैं ये बेहद ही दिलचस्प हैं। बीजेपी के लिए खतरे की घंटी भी है। बीजेपी ने हालांकि दावा किया है कि वो बहुमत के नज़दीक पहुंच चुकी है और बहुमत मिलेगा, लेकिन जब हमने नतीजों को अगर हम नतीजों पर गौर करते हैं, देखते हैं, तो साफ पता चलता है कि समाजवादी पार्टी ने ज़बरदस्त मुकाबला किया है बीजेपी का। और बीजेपी के लिए तो कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर बीजेपी उम्मीद से ही बेहद ही ख़राब बीजेपी का प्रदर्शन रहा है। अयोध्या, जिसकी जो कि बीजेपी की पूरी राजनीति की केंद्र में है, वहाँ बहुत बुरी तरह बीजेपी हारी है। जितने भी यादव परिवार के गढ़ हैं जहाँ पहले से सपा मजबूत थी, वहाँ तो लगभग बीजेपी का सफाया जैसा है। इटावा, मैनपुरी, एटा, ऐसे जगहों पर बीजेपी की स्थिति कह सकते हैं बेहद ही ख़राब है। प्रधानमंत्री मोदी का क्षेत्र जो कि बनारस है, वहाँ बीजेपी आधी सीटें नहीं जीत पाई है। 17 में 8 तक बीजेपी पहुँच पाई। गोरखपुर में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ज़बरदस्त टक्कर दिखाई दी है। इसके अलावा अगर आप देख लें तो बिजनौर, शामली, मथुरा, इसके अलावा अमरोहा, ऐसी कितनी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को बहुत बुरी तरीके से पीछे छोड़ा है। चाहे वो गोंडा हो, उन्नाव हो, और यहाँ तक लखनऊ में भी बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी दावा भले कर ले, लेकिन ज़मीनी हकीकत इस बार ये है कि बीजेपी जैसा सोच रही थी कि वो इस बार 2/3 आंकड़े आएंगी, वो खुद बहुमत के आसपास आने के लिए स्ट्रगल कर रही है। तो ये हाल उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी का हुआ है। हालांकि पार्टी नेता अभी इस बात को लेकर के इंतज़ार करने के मूड में हैं कि जब तक पूरी तरीके से सारे नतीजे नहीं आ जाते हैं तब तक वो कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन हर कोई जानता है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी की भीषण टक्कर इस बार दिखाई दी है। और समाजवादी पार्टी के लिए ये जब जिसे हम यूपी का सेमीफाइनल कह रहे हैं, बहुत शानदार रहा है।
अच्छा अभिषेक, समाजवादी पार्टी और अजीत सिंह की राष्ट्रीय लोकदल की इन चुनावों में स्थिति क्या रही? किसान आंदोलन के असर की बहुत बात की गई, चुनावी तौर पर इसका फायदा कैसे मिला है?
देखिए, अगर सबसे ज्यादा चर्चा में इस चुनाव के पहले कोई था तो वो था किसानों का आंदोलन, और पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन ने अपना असर दिखाया है। आरएलडी जो अजीत सिंह की पार्टी है उसने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है इस पंचायत चुनाव में, जो जाटलैंड जिसे हम कहते हैं या जो किसानों का क्षेत्र है उस इलाके में, यानी कि जाटलैंड जो कि बीजेपी का गढ़ बन गया था, इस बार पंचायत चुनाव ने ये दिखा दिया है कि लोगों की नाराज़गी, जाटों की नाराज़गी और किसानों की नाराज़गी कैसी है। चाहे बागपत हो, चाहे शामली हो, मथुरा हो, बिजनौर हो, इस तरीके के जितने ज़िले पश्चिमी यूपी के हैं वहाँ इस बार आरएलडी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और आरएलडी का प्रदर्शन करने के साथ साथ वहाँ सपा ने भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। तो आरएलडी और सपा दोनों का गठबंधन चुनाव के पहले है, आने वाले वक्त में भी रहेगा। ऐसी स्थिति में ये बीजेपी के लिए एक कह सकते हैं कि बड़ा झटके जैसा है, और किसान आंदोलन ने सबसे पहले अगर किसी इलाके में बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है सबसे ज़्यादा तो वो पश्चिमी यूपी है। अब बीजेपी को नए स्ट्रेटजी पर इसमें सोचना होगा, क्योंकि आने वाले चुनाव अब 2022 के हैं, इसे आप सेमीफाइनल कह लीजिए लेकिन 2022 फाइनल है, और जो भी जाटलैंड है या जो भी किसानों के इलाके माने जाते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर बीजेपी को बहुत भारी नुकसान दिखाई दिया है इस पंचायत चुनाव में, और कहीं ना कहीं जाट वोट जो है वो इस बार शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है आरएलडी के साथ, अजीत सिंह की पार्टी के साथ। आने वाला जो चुनाव है वो बीजेपी को भारी पड़ सकता है अगर बीजेपी ने अपना कोर्स करेक्शन नहीं किया तो। अब देखना ये होगा, दिलचस्प होगा कि किसान आंदोलन और ख़ास करके जाटों की नाराज़गी का जो ये असर इस चुनाव में तो दिखा है, दिख रहा है, लेकिन आगे क्या बीजेपी से किसी भी तरीके से कंट्रोल कर पाती है या नहीं।
अभिषेक, बसपा तो आम चुनावों में पूरी तरह धराशायी नजर आई, पंचायत चुनाव में क्या वो अपना पुराना लय हासिल कर पाई है?
देखिए, शायद ये पहली बार है जब बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती ने अपने उम्मीदवार बाकायदा इस पंचायत चुनाव में उतारे हैं, और हालांकि तमाम पार्टियों ने पार्टी वाइज या कह सकते हैं अधिकृत उम्मीदवार पहली बार दफ़ा उतारे हैं, लेकिन मायावती का अपना कैंडिडेट उतारना चौंकाने वाला था। मायावती अमूमन न तो कोई भी उपचुनाव लड़ती थी और ना ही इतने लोकल चुनाव में अपने पार्टी को झोंकती थी, लेकिन पहली बार उन्होंने भी अपने अपने काडर को आजमाया है, और 2022 के चुनाव के पहले जिसे कहते हैं टेस्ट करना अपने काडर को, उन्होंने वो किया। लेकिन जो नतीजे आए हैं वो बहुजन समाज पार्टी के लिए उत्साहवर्धक नहीं है। हालांकि तीसरे नंबर की पार्टी बनकर के बहुजन समाज पार्टी उभरी है, कई स्थानों पर उसने अच्छा परफॉर्म किया है, बहुजन समाज पार्टी ने कई जगहों पर नंबर वन रही है, बुंदेलखंड में भी कई जिलों में उसने अच्छा परफॉर्म किया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उसने कई जगहों पर अच्छा प्रदर्शन किया है, मथुरा में भी उसके प्रदर्शन अच्छे हैं, बनारस में भी उसने अच्छी सीटें जीती हैं, लेकिन यहाँ तक कि लखनऊ में भी BSP ने अच्छी सीटें जीती हैं। लेकिन जिस तरह के सीटों की उम्मीद बसपा को थी, बसपा उतनी सीटें नहीं जीत पाई है। कुल जो जिन जितने पदों पर चुनाव हुए हैं पंचायत सदस्यों के, उसमें लगभग 10-15% सीटें ही BSP के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। लेकिन BSP के लिए ये खतरे की घंटी ज़रूर है कि 2022 के चुनाव में अगर यही हाल रहा तो पार्टी कहाँ खड़ी रहेगी। हालांकि बसपा को ये लगता था कि वो मुख्य विपक्षी पार्टी है और उसके काडर उसके साथ खड़े रहेंगे, तीसरे नंबर की पार्टी हुई है ये सही है, कई जिलों में अच्छा प्रदर्शन किया है ये भी सही है, लेकिन ओवरऑल जो बसपा का प्रदर्शन है वो संतोषजनक नहीं है, और पार्टी को अब इस चुनाव से अगर पार्टी ने कोई सबक लिया है तो कहीं ना कहीं उसे आगे अपने सहयोगियों की भूमिका भी तलाशनी पड़ेगी, क्योंकि अकेले शायद बसपा के बूते का चुनाव अब दिखाई नहीं देता।
ये थे लखनऊ से आज तक रेडियो रिपोर्टर कुमार अभिषेक।
उम्मीदों का रोशनदान।
राही मासूम रजा ने एक कहानी में लिखा है कि अगर किसी शख्स से उसका सब कुछ छीन लिया जाए तब भी वो खड़ा रह सकता है, लेकिन अगर उससे उसकी सारी उम्मीदें छीन ली जाए तो वो उसी वक्त जमीन पर गिर पड़ेगा। उम्मीद हमारी जिंदगी की वो हवा है जो नाउम्मीदी और मायूसी के शोर में हमारे कानों में सरगोशी करते हुए कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। आज उम्मीदों के रोशनदान में बात महाराष्ट्र के कल्याण के कुछ ऐसे साथियों की जो दुनिया के लिए ऐसी ही उम्मीद साबित हो रहे हैं। ठाणे के पास एक जगह है पिसौली, विकास की नाली से कटी हुई पिछड़ी, सहूलतें कुछ भी नहीं, ज्यादातर आबादी ईंट भट्टे पर काम करती है और वहीं रहती है। लॉकडाउन हुआ तो वहां के परिवारों के लिए खाने तक की परेशानी खड़ी हो गई। काम बंद, गांव जा नहीं सकते, भूख से बिलखते बच्चों की आवाज से बस्ती की झुग्गियां गूंजने लगी। ऐसे वक्त में उम्मीद बनकर खड़े हुए कुछ नौजवान साथी, जिनका नाम है मीना सेल्वराज, रंजन माली, पूजा कनौजिया, स्वाति शर्मा और पार्वती चौहान, ये सभी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन समाज के लिए कुछ बेहतर करने का जज्बा भी है इनमें। इन लोगों ने मिलकर बनाया उम्मीद ग्रुप और फिर शुरू हुई फंड जुटाने की कोशिश। इन लोगों ने आसपास के समर्थ लोगों से पैसे जुटाए और फिर ईंट भट्टे में काम करने वालों के लिए न सिर्फ खाने का इंतजाम किया बल्कि उनके बच्चों के लिए किताबें भी मुहैया करवाई। सुनिए ग्रुप की सदस्य स्वाति शर्मा को।
हम इस ग्रुप में टोटल हम 25 लोग हैं। बस्ती में जाकर हम बस्ती के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, फिर उस पे हमें एक्शन क्या लेना है ये सब हम डिस्कस करके, और कई बार हमें नगर सेवक उनकी भी जरूरत लगती है कि उनसे कोई परमिशन लेटर लेना है, और आर्थिक साधन आर्थिक मदद लेने के लिए भी हम उनके पास कई बार जाते हैं।
हमने आज तक कम से कम 30-40 फैमिलीज को मदद की है, वो ईंट भट्टी में ही सिर्फ। उसके अलावा अगर हम लोग बच्चों का काउंट लेंगे तो वो काफी ज्यादा होगा, 50-60 बच्चों से ज्यादा हम लोग ने बुक्स दिए हैं, और हम लोग ने अराउंड 30 फैमिलीज को राशन का किट बांटा है। ऑफकोर्स काफी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि हर दिन जब भी हम लोग ऐसा कुछ काम करते हैं, हम लोग ऐसा कुछ एक्टिविटी करते हैं और हम लोग घर आके ऐसे बैठते हैं तो भी एकदम से सुकून का फीलिंग आता है कि हाँ हम लोग अपने लाइफ के साथ कुछ बहुत प्रोडक्टिव कर रहे हैं। मे बी शायद हम लोग उतने बड़े लेवल पे नहीं कर रहे बट हम लोग अपने एज से हमारी कैपेसिटी से हमसे जो हो पा रहा है हमसे जितना बन पा रहा है हम लोग उतना कर रहे, तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है और हम लोग को हमारे एरिया में एक अलग काइंड ऑफ रिकॉग्निशन मिलता है।
तो अगर आपके आसपास भी हो कुछ ऐसे लोग जो इन हालात में दूसरों के लिए उम्मीद बने हुए हैं तो हमें उनके बारे में बताइए। हमारा पता है radio@aajtak.com। उम्मीदों की रोशनदान में कल फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ।
और इसी के साथ दिन भर में आज इतना ही। अगर आप दिन भर से जुड़ा कोई फीडबैक हमें देना चाहते हैं या आज तक रेडियो के किसी भी कार्यक्रम से जुड़ा कोई सुझाव या शिकायत भी करना चाहते हैं तो हमें radio@aajtak.com पर ईमेल कर सकते हैं। हम आपके ईमेल्स को प्रोग्राम्स में शामिल करते हैं, तो ईमेल ज़रूर भेजते रहिए। और इस प्रोग्राम को आप तमाम ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपसे कोई भी अपडेट मिस नहीं होगा। इस दिन भर के लिए साउंड मिक्सिंग कर रहे थे हमारे साथी कपिल देव सिंह। अब आपसे मैं अमन गुप्ता इजाजत चाहूंगा। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।